Awakening with Brahma Kumaris.
ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत. इन दिनों हम बात कर रहे हैं मेंटल इलनेस की. माइंड मैटर्स की हमारी श्रृंखला में हमें बहुत सारे ईमेल भी आ रहे हैं. पिछली बार हमने बात की थी बाइपोलर डिसऑर्डर की और आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की. क्या है ये बीमारी, क्या है इसके सिम्टम्स और किस तरह के इलाज संभव है. बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी और जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेशर. दोनों का स्वागत. ओम शांति.
ओम शांति.
स्किज़ोफ्रेनिया जो नाम है डॉक्टर शर्मा, वो हम सबने सुना है लेकिन बहुत ज्यादा हमें नहीं समझ में आता है एक आम आदमी की उसमें देखें. आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये क्या सचमुच में इस टाइम पे प्रेवलेंट है और क्या है इसके सिम्टम्स, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस.
प्रेवलेंट है और 1-2% एडल्ट्स को हर समय ये प्रॉब्लम है. यानी आज के समय में अगर सिर्फ भारत की बात करें तो करीबन 1.5-2 करोड़ लोगों को इस समय इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं.
ओके.
और क्योंकि ये लंबी प्रॉब्लम है और होने के बाद काफ़ी देर तक चलती है, अगर उसको हम जल्दी ना सही कर पाए तो, और एक मेजर मेंटल इलनेस जिसको कहा जाता है, इन अ वे इसको प्रोटोटाइप ऑफ मेंटल इलनेस कहा जाता है. क्योंकि जब कोई व्यक्ति से कहें कि यू आर आउट ऑफ योर माइंड, तो उसके मन के अंदर जो विचार आते हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम के आते हैं जहाँ पे कि वो सही रूप से सोच नहीं सकता या उसे कई तरह के भ्रम होते हैं, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, हेलिसिनेशंस, यानी वो चीज़ें महसूस करना जो नहीं है, या दूसरों के बारे में या अपने बारे में या अपने शरीर के बारे में उसे इस तरह की कन्विक्शन हो जाती है कि जैसे वो सच्चाई है, हालांकि असल में सच्चाई नहीं होती. उसकी वजह से उसके शरीर पर बहुत असर पड़ता, उसकी रिलेशनशिप्स पे असर पड़ता है, उसके काम पे असर पड़ता.
मतलब जो भ्रम होना, इल्यूजन्स बेसिकली जो है जब हो रहे होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया उसे कहा जाता है जब ये होना शुरू हो जाए.
मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे आसपास कैमरास लगे हुए हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे को लोग फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं और मेरी सारी बात दूसरों को रिले कर देते हैं और उसकी वजह से जो मुझे मिलता है वो मुझे उस रूप से देख के कोई अलग तरह का मैसेज देता. या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जब बैठा हूं तो मुझे कुछ आवाजें सुनती हैं जो लोग मुझे बताते हैं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, या वो मुझे बताते हैं मुझे क्या करना है, और वो आवाजें उसके लिए ऐसी ही सच हैं जैसी मैं आपसे बात कर रहा हूं और वो किसी और को सुनती नहीं है. या उसे लगता है कि चौथे मकान में मेरे घर से लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूं, और क्योंकि उनको पता लग रहा है और वो मेरे खिलाफ है तो वो मुझे हार्म कर देंगे. या मेरे खाने में कोई जहर मिला रहा है जिसकी वजह से मेरे शरीर पर असर हो रहा, या मुझे ये लग जाता है कि मैं दूसरों की बातें उसके कहे बिना उसके मन में जो चल रही हैं वो पढ़ सकता हूं, या मेरी बातें दूसरा व्यक्ति मेरे कहे बिना उसे पता लग जाती है, तो उस वजह से वो हमेशा
घबरा
एक जगह पर रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि वो घबराया हुआ है कि ये जो माहौल है, इस माहौल में मैं अकेला हूं, और जैसे कि जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ है, और उस वजह से वो बाहर नहीं निकलना चाहता. कई बार लोग अपने आप को पर्दों में ढक लेते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, या ये सोच के कि दूसरा व्यक्ति मुझ पर अटैक ना कर दे, कई बार थोड़े वायलेंट हो जाते हैं. हालांकि एक और सच्चाई है कि आमतौर पे मेंटल इलनेसेस के जो पेशेंट्स हैं, इंक्लूडिंग स्किज़ोफ्रेनिया के, उनमें नॉर्मल सोसाइटी में जितनी वायलेंस है एज अ ग्रुप उससे कम पाई जाती है. वो व्यक्ति अनलेस एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो वायलेंट नहीं होते, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे, अपने में ही खोए हुए हैं, अपने आप को ही प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो बाहर वालों से उनका मिलना भी कम हो गया, बाहर जाना भी कम हो गया, अपना ध्यान रखना भी कम हो गया, दिनों दिन नहाए ही नहीं है, कब सो रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कई बार उनको ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। तो उस वजह से आपको ऑब्वियसली देखने में भी व्यक्ति जो है वो कई बार जैसे अपने में ही बातें कर रहा है, ऐसे जैसे कि किसी से बात करके उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, या हर चीज में उसको कुछ ना कुछ शक की नजर से दिखाई दे रहा है,
और उसके लिए वो रियल हो रहा है,
उसके लिए वो चीज उतनी ही रियल है जितनी मेरी आपसे बैठ के इस समय गुफ्तगु करना।
होता क्या है ये, व्हाट रियली हैपेंस, हमारे दिमाग में कुछ परिवर्तन होने शुरू हो जाता है केमिकल्स का।
स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि डेफिनेटली ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस अब हम देखते हैं होने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जिनसे कि हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। जो चीज़ हम सुनते हैं, जैसे एग्जांपल है कि कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो कुत्ते सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते, लेकिन इस व्यक्ति को वो आवाज़ें ऐसे लगती हैं जैसे कि नॉर्मल है, हालांकि असल में किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है। तो ब्रेन जो है वो चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, ब्रेन के कुछ केमिकल्स में कमी आनी शुरू हो जाती है। कुछ हद तक स्किज़ोफ्रेनिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, इन द सेंस कि जिनकी फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम है उनमें ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि उसके आगे सब व्यक्तियों को होगी, परसेंटेज ज़रूर बढ़ जाती हैं। यानी जैसे कि जनरल पॉपुलेशन में मैंने कहा 1-2% है, अगर किसी के फैमिली में एक व्यक्ति को, फादर को, मदर को, ब्रदर को है, तो वो बढ़ के 6-8% हो जाती है, यानी 16 में से एक व्यक्ति को होगी। लेकिन बाकी ऐसी 15 फैमिलीज जिनमें की फैमिली में भी हिस्ट्री है उनको नहीं होगी। तो जब तक सिम्टम्स ना आए तब तक हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर किसी एक व्यक्ति को भी है। दूसरी जो इशू आता है कि क्योंकि ये आमतौर पे एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में शुरू होती है, तो व्यक्ति की समझने की, व्यक्ति की पढ़ाई करने की, व्यक्ति की नए संबंध बनाने की या परिवार में ही रहने की जो ताकत है वो कम होनी शुरू होती है, और बाद में शायद बिल्कुल ही वो कई बार विड्रॉ कर जाते हैं। तो उस वजह से जो नॉर्मलसी आनी चाहिए इस उम्र में, और परिवार कई बार प्रोजेक्ट करते हैं कि अब मेरा बेटा या बेटी पढ़ रहे हैं, आगे जाके ये बनेंगे, वो एकदम कम होना शुरू हो जाता है। उनको समझ ही नहीं आता कि ये बात क्या हुई, और उस कारण से भी कई बार इन सिम्टम्स को हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देते क्योंकि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति में ऐसी ऑडिटी हो, एबनॉर्मलसी हो, तो ये नॉर्मल नहीं माना जा सकता, ये सिम्टम्स खास तौर पर।
अच्छा, ज्यादातर ये फियर से जुड़े ही हैं जो इमेजिनेशन से इल्यूजन्स हैं।
ज्यादातर फियर से जुड़े हैं और उसकी वजह से व्यक्ति को बहुत डिस्ट्रेस होता है, यानी वो खुद भी घबराया होता है, खुद भी परेशान होता है, क्योंकि शुरू शुरू में तो उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको डर बहुत लगता है, उसको एंग्जाइटी बहुत होती है। कई बार क्योंकि ये इंटरपर्सनल चीजों से जुड़े हुए हैं, उसको मान लीजिए लगता है कि उसके हस्बैंड या वाइफ उसके खिलाफ है, तो उसमें फियर के साथ साथ गुस्सा,
शक
के साथ गुस्सा जो है वो भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन एंग्जाइटी, फियर एंड समटाइम्स एग्रेशन, ये प्रेडोमिनेंट चीजें हैं जो कि इसमें पाई जाती हैं।
और कितनी जल्दी इलाज जो है वो जरूरी है?
एट द अर्लीस्ट मैं कहूंगा पहले दिन से, क्योंकि जितना लंबा खिंचेगा, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में फिर भी कुछ महीनों के बाद व्यक्ति नॉर्मल पे आ सकता है, अगर बार बार हो तो वो एपिसोड्स लंबे खींचते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा पाया जाता है कि एक बार जब सिम्टम शुरू होते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और सिम्टम्स बढ़ने के साथ साथ उसके जीवन में जो टूटना है नॉर्मलसी से, ब्रेक फ्रॉम रियलिटी, वो भी गहराई जाती है, और उसकी वजह से फिर उसको बाहर जाके फिर से जीवन में जीना नॉर्मली मुश्किल होता जाता है। तो वो जितना लंबा खींचेगा उतना ही कष्ट ज्यादा।
यहाँ ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली रियलिटी से एक परे चला गया, जैसे जैसे कहा डॉक्टर साहब ने कि आउट ऑफ माइंड हो जाना, बिल्कुल वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, और हम ही नहीं जो एक फैमिली है वो ही नहीं कनेक्ट हो पाती ऐसे में एक्सेप्टेंस। एंड देन बिकॉज हमारे तो पहली बात जहन में यही आती है कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
लेकिन इसमें भी जो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जिनका रेगुलर अगर इलाज चल रहा है, इट्स नॉट दैट दे विल बी इन दैट फेज ऑलवेज, इज दैट ट्रू? दिस इज द बिगिनिंग व्हेन देयर इज नो ट्रीटमेंट गोइंग ऑन, तब वो इस सारे स्टेज में, वो तो फिर एक बीमारी ही है ना। सिर्फ होता ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, रेगुलर मेडिसिन, वो सब चले तो फिर बाय एंड लार्ज वो भी हमें नॉर्मल पे ही दिखेंगे बिल्कुल। हाँ, सिर्फ ये है कि वो उतना परफॉर्म नहीं करेंगे या करना नहीं चाहिए। क्यों? वो भी इसलिए क्योंकि उतना प्रेशर नहीं डालो किसी पे। इट्स लाइक अगेन, अगर मेरा एक हाथ कमजोर है किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, तो फिर अब वो थोड़ा कमजोर ही रहेगा ना जीवन भर। तो हम ध्यान रखेंगे कि इस पे उतना प्रेशर नहीं डाल सकते, इससे वो वजन नहीं उठा सकते। किसी को स्लिप डिस्क है, डॉक्टर कहेगा अब आप बेंड नहीं करना। वी सो यूज टू ऑल दिस, हमें पता है कि ये जिसको हम कहेंगे एक छोटा सा हैंडीकैप आया मेरे जीवन में कि अब इस हाथ से ये नहीं करना, इतनी देर खड़ा नहीं होना, इतना बेंड नहीं करना। सिमिलरली इसको भी एक उसी रूप से लेना पड़ेगा, नॉट वेरी इजी एकदम से एक्सेप्ट करना, बट फाइनली जितना एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे उतना ही हमारे लिए लाइफ
इजी हो गया
और उस व्यक्ति के लिए लाइफ इजियर हो जाएगी। अगर आज मुझे पता चले कि मुझे कैंसर है तो वो भी कोई इजी नहीं है मेरे लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं और उसको फिर बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, वो फिर उससे हील भी हो जाते हैं और बहुत लंबे समय बहुत अच्छा चलते हैं। एंड कई बार तो बहुत साल जो डॉक्टर ने भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती है। तो माइंड का रोल तो बहुत बड़ा है। अब इसमें यह है कि शायद वो व्यक्ति खुद उतना पॉजिटिव भी ना सोच पाए तो फैमिली का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार फैमिली ही एक कोलैप्स हो जाती है, यू नो, एज इफ इट्स बिग, वी नो इट्स बिग बट इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन नॉट हैंडल। लुक एट दोज फैमिलीज जिनके यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ तभी वो बच्चा फिजिकली या मेंटली बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन वो परिवार उस बच्चे के साथ बहुत खुश है, वो बच्चे को हर जगह अपने साथ फंक्शन में लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो बच्चा भी जीवन में शायद कभी पूरा उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, शायद सब कुछ जो, लेकिन पेरेंट्स एंड द फैमिली एक्सेप्ट दैट चाइल्ड एज द चाइल्ड इज। उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस बच्चे के साथ, हर जगह कभी खुद उठाना पड़ता है सब कुछ, लेकिन वो कितने प्यार से चलते हैं। हमें भी ये देखना होगा। सिर्फ ये है उस केस में, यू नो, इट हैपेंस फ्रॉम चाइल्डहुड, ये सडनली कम्स टू अस जब बच्चा 18 है 20 है, लेकिन लेट्स क्रॉस दैट फेज एंड एक्सेप्ट जितना करें। इसमें अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं, एक हायर सोर्स से कनेक्ट, बिकॉज हमें पावर की जरूरत है, यू नो, जितना भी हम खुद पॉजिटिवली,
यानी पेशेंट या फैमिली,
पेशेंट तो अभी करेगी नहीं,
फैमिली
करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको सिज़ोफ्रेनिया, जिनको ये सुनाई देता है कि जैसे भगवान उनसे बात कर रहा है, या जो इष्ट देवी देवता, यू नो, जिनको वो मानते हैं वो उनको कुछ कह रहे हैं। फिर कई बार, क्योंकि जैसे कहा ना, वो इतना रियल साउंड होगा जैसे यू आर टॉकिंग टू मी, तो कहेंगे परमात्मा ने मुझे कहा है कि मुझे ऐसा करना है तो मुझे ये ही करना है। सो इसीलिए वो तो इस समय ये सब चीजों में, हाँ, लेकिन जब वो ट्रीटमेंट लेके थोड़ा ठीक हो जाए तो वो अगर स्पिरिचुअल नॉलेज को लेते हैं तो एटलीस्ट अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना। लेकिन फैमिली तो डेफिनेटली नीड्स इट ना। इट्स लाइक हमारे घर में क्राइसिस आई है, तो क्राइसिस को क्रॉस करने के लिए हमें पहले पावरफुल होना होगा। हम जितना पावरफुल होंगे, घर का वातावरण जितना लाइट होगा, हम जितना पब्लिक स्टिग्मा से नहीं डरेंगे, यू नो, उतना वो व्यक्ति भी उसको हैंडल करेगा। लेकिन हम ही इतना, यू नो, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, लेट्स स्टॉप बॉदरिंग अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आई है एंड आई एम गोइंग टू फेस इट, बट लोग क्या कहेंगे बिकम्स अ बिगर स्टिग्मा, जिस वजह से हम उस बच्चे को या उस व्यक्ति को बाहर नहीं लेके जाते। बट फिर वो करने से उस व्यक्ति को खुद अपने लिए क्या लगने लगेगा कि यस, देर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद मी। एंड मोर एक्सेप्टेंस बिकॉज दैट पर्सन माइट नॉट बिहेव और टॉक नॉर्मल, यू नो, दे कैन गेट वायलेंट, दे कैन फाइट। फैमिली को स्पिरिचुअल पावर की इसलिए जरूरत है, सपोज आप हैं मेरी फैमिली में और आपके साथ ऐसी बात चल रही है, अब मेरे तो जीवन की वैसे रिएक्टिव नेचर हुई है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोटे। अब आप अगर जब मुझे कुछ कुछ अजीब कहेंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझे कहेंगे कि मैं आप पे शक करती हूँ या मैं आपके साथ गल, जैसे उन्होंने कहा कि वो मुझे कोई फॉलो कर रहा है, तो मेरे पास उतनी स्टेबिलिटी नहीं है ना, मेरे पास उतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि जब आप ऐसा कुछ मुझे कहेंगे आई विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल एंड देन आई विल रिएक्ट। व्हेन आई विल रिएक्ट आप रिएक्ट करेंगे, देन देयर विल बी अ फाइट। सपोज एक बच्चा मदर को जाके कहे आपने मेरे खाने में जहर डाला है, वो मदर ही रिएक्ट कर दे, रोने ही लग जाए, अपसेट ही हो जाए, वो खुद ही अपने आप में एक डिप्रेसिव स्टेज में चली जाए। सो दैट पावर वी नीड कि वो कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, इट्स फाइन एंड यू नो इट्स एब्सोल्युटली। तो वो पावर हमें स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन दे सकती है। तो वन इज लेट्स एनी वेज डू इट इन आवर लाइफ, लेकिन अगर जीवन में कुछ ऐसी क्राइसिस आई है तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, हमारी वो पावर उस व्यक्ति के लिए एम्पावरमेंट जरूर बनेगी।
अगर हम 1.5 से 2% लोगों की बात करते हैं और अगर हम उनके परिवार वालों को, क्योंकि वो भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो हम करीबन 10% लोगों की बात कर रहे हैं जिनके अपने परिवार में या बिल्कुल क्लोज किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है या वो खुद उससे जूझ रहे हैं। ये एक साइजेबल प्रोपोर्शन है और माइनॉरिटी नहीं है, और इसलिए ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, मेरा ख्याल है अब उस माइंडसेट से थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स शुरू के हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, और यहाँ पर इस प्रॉब्लम में दवा का एक बहुत बहुत मेजर रोल है, राइट इन द बिगनिंग एंड कंटिन्यूसली 3 से 4 हफ्तों में व्यक्ति के सिम्टम्स बेटर होने शुरू हो जाते हैं, और आमतौर पे 2 से 3 महीनों में नॉर्मली लोग स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। वहाँ पे रोल आ जाता है फैमिली का और समाज के और तबकों का, इंक्लूडिंग वर्क, क्योंकि अगर उस व्यक्ति की एक रूटीन है, अगर उसको ये फीलिंग है कि वो एक्सेप्टेड है एज दे आर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो उससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और उनके जो शक हैं, जो डर हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। आंकड़े दिखाते हैं, और इसके लिए काफी समय से शोध रही है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्रेस्ड इमोशंस, यानी जो परिवार वाले हैं या जो आसपास के लोग हैं, अगर वो नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा दिखाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में कटु शब्द बोलते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, उसको परिवार का हिस्सा नहीं समझते हैं,
मजाक भी तो कितनी बार उड़ाते हैं,
मजाक उड़ाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली फिल्मों ने इसमें एक बहुत बड़ा कई बार नेगेटिव रोल ही प्ले किया है कि उस व्यक्ति को एक ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन बना के रखा गया है, या मेंटल हॉस्पिटल्स की कई बार बहुत ज्यादा एक नेगेटिव सी तस्वीर जो दिखाई जाती है, तो उसकी वजह से समाज वाले लोग जो हैं, अगर वो दिखाते हैं या परिवार दिखाते हैं, तो उसकी रिकवरी मेडिसिंस होने के बावजूद कम रहती है।
ओके।
और जो कल्चर थे, इंडिया एक ऐसा कल्चर रहा है जहां पे कि बाय एंड लार्ज फैमिलीज काफी सपोर्टिव रही हैं, लेकिन अगर फैमिलीज नेगेटिव होती हैं या समाज नेगेटिव होता है, तो उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, उसको ठीक होने में भी ज्यादा देर लगती है या वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमें ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसका भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने ना सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस खोया है, उसके लिए जो जीवन जीने का तरीका उसने इतने सालों तक सीखा वो सडनली बदल गया। और वो बदल के उसमें उसकी मदद करके उसको नॉर्मलसी लाने में आसपास वालों का एक बहुत बड़ा रोल है।
और कहीं ना कहीं जो कांस्टेंट फियर में रह रहा है व्यक्ति, उसके लिए भी वो कोई जिंदगी आसान नहीं होगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम देखें, कई सालों से हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस की हम बात करते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में इतना बदलाव आया है कि पिछले 15-20 साल में हमारे जो फिजिकल इलनेसेस हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, और उसके लिए हमने उसको चेंज करने की कोशिश की है। अब अगर हम आज हम ये पूरी श्रृंखला में जो बात करते आए हैं, मेंटल इलनेसेस को भी, जैसा आप कह रहे हैं कि अब इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, कि 10% लोग इफेक्टेड होना पॉपुलेशन के, दैट्स अ बिग अमाउंट. तो क्या कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें ताकि हम इन ये जो इतने आंकड़े हमारे सामने आते जा रहे हैं मेंटल इलनेस के भी, उन पर भी काम किया जा सके, क्योंकि नहीं तो आने वाले वक्त में ये और बढ़ते ही जाएंगे.
स्किजोफ्रेनिया में खासतौर पर अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें सही समय पर सोना, फिजिकली एक्टिव रहना, एक रूटीन का बने रहना, आसपास वालों से संबंध बनाए रखना और किसी न किसी पर्पज को जीवन में लेकर चलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. साथ ही साथ उनको एक पॉजिटिव फीडबैक दूसरों से मिलना कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, और जो छोटी मोटी एबनॉर्मेलिटीज हो उनको नज़रअंदाज कर देना, और सही इलाज ये जरूरी हो जाता है. स्किज़ोफ्रेनिया में खास तौर पे ऐसा भी देखा गया है कि लोगों का वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, कुछ हद तक कुछ दवाइयों की वजह से और कुछ हद तक क्योंकि उन्हें अपनी ही सुध-बुध नहीं है, तो या तो वो बिल्कुल वेट लूज कर देते हैं शुरू के समय में खास तौर पे, या फिर वो जो भी मिला और खासतौर पे जंक फूड मिला, जिस समय मिला, देर में सोए, उस समय जो भी खाना खाया खा लिया, एक्सरसाइज नहीं हुई, तो वो बढ़ जाता है. स्किज़ोफ्रेनिया और टबैको सेवन का भी एक बहुत बड़ा आपस में संबंध देखा गया, और उसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि तंबाकू, चाहे वो खाने का हो चाहे वो पीने का हो, सिगरेट पीड़ी, उसकी वजह से दवाइयाँ जो हैं जो कि मदद करती हैं व्यक्ति की, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है. और क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट पैदा करती हैं, या कोई और भी अगर वो मादक पदार्थ ले रहे हैं, कई बार लोग अपने तनाव को खास तौर पे शुरू शुरू में कम करने के लिए शराब का सेवन लेते हैं या कुछ और चीज़ों का करते हैं सेवन, तो भी उससे उनका जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं. तो इस लाइफस्टाइल में खास तौर पे मादक पदार्थ जितने भी हैं उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बट इवन अदरवाइज जो दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल, जिसमें कि प्रॉपर टाइम नींद का, प्रॉपर टाइम एक्सरसाइज का, सही भोजन एंड एक पर्पस जिंदगी का, अध्यात्म वहां पे स्पेशली सिस्टर शिवानी ने बहुत अच्छे तरीके से कि परिवार वालों को किस तरह से सशक्त कर सकता है अध्यात्म. जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं या उसको इस तरह के कुछ भ्रम हो रहे हैं, उसको अकेले बैठ के ध्यान में जाना बिल्कुल सही नहीं है, उससे इसके सिम्टम बढ़ेंगे, और क्योंकि वो अपने में ही खोया हुआ है तो वो अपने में ज़्यादा खो जाएगा. लेकिन अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए किसी के साथ कुछ देर के लिए वो आध्यात्म को इस रूप में कि मैं जीवन को अब आगे जो कि बदलाव आया है उसके बाद किस तरह से रीएडजस्ट करूं, मैं अपने गोल्स किस तरह से सेट करूं, कई बार दूसरों की मदद करने में उनको बहुत खुशी मिलती है और उससे उनको ये एक फीलिंग कि मैं भी सक्षम हूँ वो हो सकता है, तो उस तरह से अगर वो, और कई बार शॉर्ट पीरियड्स के लिए अगर कमेंट्री के साथ अपने सामने उनको अगर मेडिटेशन कराई जाए बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, तो कुछ देर के लिए उनकी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है. तो इस रूप से परिवार के लिए और व्यक्ति के लिए अध्यात्म थोड़ी सी मदद कर सकता है.
अभी शर्मा, एक बार अगर जो पेशेंट है उसको इफेक्ट हुआ, वो भय में गया, उसको अपने अपने ऐसे इल्यूजन्स हुए, उसके दवाई ली और वो थोड़ा स्टेबल हुआ, जब स्टेबल हुआ तो जैसे बाइपोलर में था, रियलाइजेशन कि मेरे को क्या हुआ था, उसका दुख, उसकी घबराहट, और अब जो मेरे अपने सपने थे वो टूट गए, मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं शायद जी पाऊं, तो वो सारा चीज जो पेशेंट है उसके लिए कितनी हार्मफुल होती है ये रियलाइजेशन.
ये रियलाइजेशन उसके लिए भी होती है और कुछ हद तक फैमिलीज के लिए भी होती है. तो एक तरह से क्योंकि वो व्यक्ति इन चीज़ों को पूरी तरह से नहीं सोच पाता, थोड़ा सा ठीक होने के बाद भी, जब पूरा स्टेबलाइज होता है, सिम्टम्स बिल्कुल चले जाते हैं, उस समय शायद اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات اس سے کی جا سکتی ہے, لیکن پہلے فیملی, کیونکہ فیملی عام طور پہ ان ڈروں سے جب گزرتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ویکتی کو بھی کہتی ہے, یا تو یہ کہ تیری وجہ سے یہ ہو گیا, ہمارے پریوار میں پرابلم آ گئی, یا تو آگے کچھ کر نہیں پائے گا, یا ہمارے بعد تیرا کیا ہوگا. تو وہ ڈر جو ہے وہ روز جیتا ہے. تو پہلے فیملی سشکت ہو جائے, اور اس میں میرے خیال سے یہ بات کو سمجھنا کہ جو بھی ہوا آپ اسے نہیں بدل سکتے, لیکن جو اب ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی سچویشن اتنی خراب نہیں ہے کہ وہ جینے لائق نہیں ہے, اور ہر سمے زندگی میں نئی باتیں آتی ہیں, اور اگر یہ پرابلم بھی ہوئی ہے ٹریٹمنٹ سے سٹیبل ہونے کے بعد آپ ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں. جو آپ نے سوچا تھا شاید ویسا نہ ہو, لیکن نئی اپارچونیٹیز آ سکتی ہیں. تو جب یہ فیملی بات سمجھتی ہے اور اس پرکار سے ویکتی سے کہتی ہے اور ایکسیپٹ کرتی ہے تو ڈپریشنز نہیں آتے, لیکن وہاں پر اسے اور پرسن جس کو کہ پرابلم ہوئی ہے اس کو ایک نئی شروعات جلد سے جلد, ڈپینڈنگ آن وہ کیا کر سکتا ہے, کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب وہ فوکس اس کا اس سے شفٹ ہو گئے کہ کیا ہوا سے کہ میں کیا اور اب آگے جا کے پازیٹیولی کر سکتا ہوں جس میں اسے اچھا لگتا ہے, پریوار اسے بڑھاوا دیتا ہے, اور وہ آن گراؤنڈ ریالٹی دیکھتا ہے, اور سمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ دوا بھی چل رہی ہوتی ہے, تو ویکتی سٹیبل ہو سکتے ہیں. اور میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ان ویکتیوں سے کئی بار, میں ایز اے ڈاکٹر بہت بار ان سے سیکھتا ہوں کہ جیون میں کوئی بھی سچائی فائنل نہیں ہوتی. کئی بار بہت کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی شمتا ہے کہ آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ نیا پن کر سکتے ہیں, اینڈ ڈسپائٹ ہیونگ ڈیفیکلٹیز ایک جی پانے کا جو ایک فیلنگ ہے وہ کئی بار ان میں اور ان کی فیملی میں بہت بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ جو وکٹم موڈ ہے اس سے پہلے ویکتی کو اور پریوار کو ہٹنا ضروری ہو جاتا ہے.
جیسے ججیوشا کہتے ہیں کہ ججیوشا اگر ہے تو ہم زندگی کو کسی بھی روپ میں دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر شرما سچ شیوانی, تھینک یو سو مچ آج کی پوری بات چیت کے لیے.
اوم شانتی.
سکیزوفرینیا از اے کنڈیشن ان وچ اے پرسن از ناٹ ایبل ٹو تھنک پراپرلی, ایکسپیرینسز الیوژنز, ڈیلیوژنز, hallucinations, unreal convictions about him and others. The person can hear voices, feels that people can read his thoughts, or he can read other people's thoughts, may feel that his food is being poisoned. He is always in a state of fear and distress, as if everyone is conspiring to harm him. In schizophrenia, the brain misinterprets the information it receives. Certain chemicals in the brain start reducing. The family of the patient needs to empower themselves spiritually and meditate so as to remain calm in face of his aggressive and doubtful behavior. Being accepted as they are by family and people at work helps in healing of the patient.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660. Shanti.